نور کے متعلق قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت ہم ڈسکس کریں گے، یہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 32 ہے، سورہ توبہ میں ہے، جس میں خدا فرماتا ہے یُرِیدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ لوگ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سمبل ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دنیا میں کسی جگہ پر کوئی لیمپ ہے اور یہ خدا کا نور ہے اور لوگ چڑھ چڑھ کے فو کر کے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے لوگ میرے نور کے چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، نور حق ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، خندہ زن یعنی ہنس رہی ہے، نور حق کفر کی حرکت پر ہنس رہی ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایک لیمپ جل رہا ہے اور کافر چڑھ کے پھونک مار رہے ہیں۔ پھونکوں سے بجھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہے، سلیمہ جیسے کہہ رہی ہیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو اس ہوا سے گفتگو بنتی ہے جو ہم پھیپھڑے میں لے چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے منہ کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے۔ اگر آپ ناک سے سانس نہ لیں یا منہ سے سانس نہ لیں اور آپ کے اندر کی پوری ہوا نکل چکی ہے تو پھر آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ٹھیک ہے زبان چاہیے، ووکل کارڈز چاہیے، اور بھی اندر میکانزم چاہیے، مگر پھیپھڑے میں ہوا بھی چاہیے۔ اس ہوا کے بغیر آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو پھونکوں سے کسی کو بجھانے کا مطلب یہ ہے غلط دلائل سے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی زندہ امام نہیں، تو لوگ اپنے غلط دلائل سے اپنی پھونکوں سے نور کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر خدا کو یہ پسند نہیں ہے، اور خدا تو اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ تو اس میں ہمارے اسماعیلی بزرگوں کے مطابق زمانہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ ہے جس میں لوگ مسلسل امام کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، ایک زمانہ وہ آئے گا جہاں یہ نور اتنا روشن، اتنا تابان ہو چکا ہوگا کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کا بھی نہیں سوچے گا۔ تو اس دور کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے دین کی رات، شب دین، اس آدھے وقت کو کہا ہے روز دین، دین کا دن، کیونکہ دن میں سب چیزیں نظر آتی ہیں، یہ دین کی رات تھی۔ اس کو دور شریعت کہا ہے، اس کو دور قیامت کہا ہے، اس کو تنزیل کا ٹائم کہا ہے، اس کو تاویل کا ٹائم کہا ہے، یعنی زمانہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پہ، کہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے مگر خدا کو یہ پسند نہیں ہے، وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب امامت کی ہسٹری کو دیکھیں، امام وقت اور حالات کے مطابق دور سطر میں رہے، دائیوں کے ذریعے سے پیغامات آئے، دائیوں کو کتنی تکلیف دی گئی، کہتے ہیں دائیوں کے پیچھے چھری سے پیغام لکھا جاتا تھا بعض اوقات، کیونکہ وہ پرچہ بھی لے جاتے تو پکڑا جاتا تھا۔ اتنی مشکل حالات میں دائیوں نے کام کیا، چونکہ اس وقت مخالفت تھی، اس وقت امام سے دشمنی بہت زیادہ تھی۔ اب بھی کچھ چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کتنی چیزیں ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں۔ اب پہلے وقت میں بڑے پیمانے پہ اسماعیلیوں کا مسکر بھی ہوا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، سیریا میں کہتے ہیں اتنا ظلم ہوا ہے، بہت سارے دوسرے ملکوں میں ظلم ہوا ہے، اور اسماعیلیوں کو بہت مشکل سے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی کمیونٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، مولا کی حفاظت ہر وقت تھی، لیکن چونکہ حالات مشکل تھے تو لوگ اپنے باطل دلیلوں سے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ دور سطر میں، آپ کو معلوم ہے اسماعیلی ہسٹری میں دو مرتبہ دور سطر ہوا، ایک دور سطر امام اسماعیل سے شروع ہوا، امام جعفر صادق کے فرزند، اور امام مہدی تک رہا، امام مہدی پھر نارتھ افریقہ میں ظاہر ہوئے، اور دوسرا دور سطر آل موت کے ڈکلائن کے بعد پھر ایک دور سطر تھا کہ امامان جو ہیں وہ صوفیوں کے ساتھ مل کر خانقاہوں میں عبادت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اعلانیہ امام نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ لوگ دشمنی کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام خلیل اللہ ثانی جو تھے ایران میں، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ بہت مشکل وقت تھا کمیونٹی کے لیے۔ تو اس مشکل وقت میں امام حجاب میں رہتے تھے، دور سطر میں رہتے تھے، دو مرتبہ تاریخ میں دور سطر تھا، اور اس پورے پیریڈ کو پیروں نے دور سطر بھی کہا ہے، کہ یہ دور سطر ہے، یہ دور کشف ہے، एक माना में ये पूरा पीरियड दौरे सतर था कि इमाम एहतियात करते थे, मुरीदों को हिदायत देने में भी एहतियात करते थे। और आप देखें, इमाम ऐसे मुल्कों में नहीं गए थे जहाँ पे मुरीदों को कुछ ख़तरा हो सकता था। ये बहुत रीसेंट है कि इमाम अफ़गानिस्तान में कई दफ़ा गए, सीरिया में गए, और इंशाल्लाह अब ईरान भी जाएंगे, चूँकि जहाँ इमाम की जमात है, इमाम उन तमाम जगहों पर जाएगा। लेकिन ये एहतियात का वक्त था, ये मुश्किल का वक्त था, और इसमें इमाम जो है वो अपने मकाम पर तमाम मोमिनीन से राबता नहीं कर सकते थे। लोगों को छुप छुप के आना पड़ता था, और कभी दावत का मैसेज पहुंचता था, कभी कहीं मैसेज नहीं पहुंचता था। नॉर्दर्न एरियाज़ की हिस्ट्री पाकिस्तान में जो हुंजा है, कहते हैं वहाँ कई सालों तक उन्होंने न इमाम की आवाज़ सुनी थी, न इमाम का दीदार किया था। और पहले इमाम जिनको उन्होंने देखा वो मौलाना हाजिर इमाम थे, जो 1960 में पहली मरतबा दीदार देने के लिए गए। इससे पहले मेरे ससुर बयान करते थे कि घर में जो बड़े संदूक होते थे उसमें इमाम की पिक्चर को रखते थे, उसके ऊपर मतलब लोबान और थोमल कहते हैं वहाँ पर वो करते थे, और अच्छी चादरें बिछा के रखते थे। और जब ख़ानदान के लोगों को ऐसा हो, इमाम की कोई पिक्चर अगर उनको मिल गई है, जब ख़ानदान के लोगों को ऐसा हो कि हमें इमाम का दीदार करना है, तो पूरी फैमिली जमा होकर गिरिया उजारी करके रो के तस्बीहात दुआएं पढ़ के वो चादर हटाते थे, संदूक खोलते थे, और फिर फ़ोटो दिखाते थे, और लोग सजदे में जाके रोते थे। 2300 सालों तक इमाम का कोई कांटेक्ट नहीं था। आगा अब्दुल समद तशरीफ़ लाए थे इमाम के हुक्म से हिदायत देने के लिए, उससे पहले पीर सबज़ली आए थे, मगर इमाम को उन्होंने नहीं देखा था, तो ये कांटेक्ट इजी नहीं था। ताजिकिस्तान की जमात भी 2100 सालों तक, जब कम्युनिज़्म वहाँ पर इतना एक्टिव था और रशियन का कब्ज़ा हो गया ताजिकिस्तान पे, आधा बदख्शान जो है वो उनके पास था, तो वो इमाम से काफ़ी अरसे तक इमाम का दीदार उन्होंने नहीं किया था, और इमाम से उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं था जाहिर में। दौरे सत्तर में इतनी दुश्मनी थी कि एक इमाम का कोई सादा मुरीद इमाम के पास आया, उसका या मौला मैं फलां खलीफा के दरबार में गया। आपको मालूम है कि वो दूसरे लोग जो काबिज़ थे वो हुकूमत कर रहे थे, तो वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे आले फ़ातिमा का अगर इमाम मिल जाए तो मैं इसकी बहुत इज़्ज़त करूँगा, मैं उसको यहाँ ले आऊँगा। तो या मौला वो तो आपकी बहुत तारीफ़ करता, तो मौला ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करो तुम खुद अपने आप को इमाम ज़ाहिर करो। तो उसने जाकर खुद कहा कि मैं ही इमाम हूँ। उस वक्त बहुत से लोग अपने नाम अब्दुल्ला रखते थे, कहते इमामान के नाम भी ज़्यादातर अब्दुल्ला होते थे, ये एक कोड नेम होता था किसी तरह से। तो उसने जाकर कहा कि मैं ही इमाम हूँ, मैं तो अभी तक तुमसे छुपा रहा था, फौरन कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह लोग दुश्मनी कर रहे थे, ये वो वक्त था जब खुदा के नूर के चिराग को अपनी फूंकों से बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ से हालात चेंज हुए? 1840, जब इमाम हसन अली शाह दातार बम्बई इंडिया
बॉम्बे
पहुँचे। ईरान में भी हालात बहुत ख़राब थे। ईरान से जब मौला बम्बई पहुँचे हैं, और बम्बई में 1848 में दरखाना कायम हुआ, वहाँ पर इमाम के मुरीद सीरिया से भी आए, ईरान से भी आए, अफ्रीका से भी आए, हर जगह से मुरीद आए। मौला ने सबसे मुलाकात की, अफ्रीका में उस वक्त शायद नहीं थे, लेकिन बाकी जगहों से मुरीद जो है इमाम से मिलने के लिए आए। तो इमाम का ये दरखाना, चूँकि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया था, वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इस लिहाज से वहाँ सेफ्टी थी, मज़हब का ये तासुब नहीं था, और बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की भी थी, दूसरे रिलीजन की प्रेजेंस भी थी। वहाँ इमाम का जो दरखाना कायम हुआ, वहाँ से इंटरनेशनली कांटेक्ट होने लगा जमातों से, ये उस वक्त से शुरू हो गया। फिर ये बढ़ता गया अब सेफ्टी की तरफ, और जो ये नूर का चिराग है रोशन हो चुका था, और अब खुदा अपने नूर को मुकम्मल कर रहा है। इमाम का नूर हर वक्त मुकम्मल है, लेकिन ज़माने के हिसाब से इमाम कब जाहिर होकर ज़्यादा काम कर रहा है, ये बात ज़माने के हिसाब से है कि नूर को मुकम्मल करेगा। ऐसा नहीं कि इमाम का नूर नामुकम्मल था, इमाम का नूर मौला मुर्तज़ा अली ही में मुकम्मल था, लेकिन ज़माने के एतबार से जब इमाम का नूर जाहिर होगा, इस हवाले से खुदा कह रहा है कि मैं अपना नूर मुकम्मल करूंगा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को कहेगा, जिस दिन तुम मेरा ये हुनर सीख जाओगे उस दिन मैं समझूंगा मैं कंप्लीट हो गया। बाप तो कंप्लीट था ही, मगर बेटे की कामयाबी के दिन को वो अपनी कंप्लीशन से मिलाता है। तो इस तरह खुदा फरमाता है कि मैं अपने नूर को मुकम्मल करूंगा, यानी ज़माने के एतबार से नूर रोशन होगा, वो नूर मुकम्मल होना हुआ, वरना फीजाते ही इमाम हमेशा से मुकम्मल है। तो इमाम हसन अली शाह का सेंटर बनाना, और इसके बाद इस्माइलियों का वहाँ आना, फिर इमाम का जो जम्पू द्वीप में इमाम के आने की पेशनगोई थी, पीर सदरुद्दीन ने कब की कर ली थी कि इमाम जो है वो जम्पू द्वीप में आएंगे, बाकी पीरों ने भी खुशखबरी दी थी कि इमाम जम्पू द्वीप में आएंगे, और इमाम जम्पू द्वीप में आ गए। और इस जम्पूद्वीप में आने का, जम्पूद्वीप का एक मतलब इंसान का दिल भी लेते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट जो था वो भी बुरा था। वहाँ आने के बाद आप देखें काम आसान हो गए, इंस्टीट्यूशंस बने, तंजीम हुई, वॉलंटियर्स बने, जमात के इदारे बने, और जमात बहुत मुनज़म तरीके से काम करने लगी। इसका इशारा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक जगह पर फरमाया है, इमाम हसन अली शाह जब 1848 में बम्बई में दरखाना या हेडक्वार्टर्स कायम हो गया, तो इस फैसले के बारे में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लिखते हैं, इट वॉज एज इफ द हैवी लोड ऑफ परसिक्यूशन एंड फैनेटिकल हॉस्टिलिटी विच दे हैड हैड टू बेयर फॉर सो लॉन्ग वॉज लिफ्टेड। कि इमामों पर जो परसिक्यूशन का और जो इंतहाई फैनेटिक एटीट्यूड लोगों का था, वो जो बार था वो उठा लिया गया इस फैसले के बाद। क्योंकि अब दरखाना इंडिया में है, अब लोग वहाँ आते हैं, अब इमाम के मुरीद कुछ आशिकार भी हुए, काम करने लगे, और वो खौफ जो अरब से लेकर ईरान तक जारी था अब वो थोड़ा कम हो गया, और जिनको मिलना था वो इंडिया में आके इमाम से मिल सकते थे। और ये कत्ल व गारतगरी ख़त्म हो गई, और इसके बाद जो है, और फिर सदरुद्दीन ने जो है इसकी पेशन गोई की थी। अब इसके बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ज़माना आता है। अब देखिए इमाम सुल्तान शाह का ज़माना कैसे चेंज का ज़माना है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं उस वक्त बरतानिया की मलिका के साथ प्रोग्राम्स अटेंड करते थे, जब बरतानिया के क्लब्स पे लिखा होता था मुस्लिम्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह विक्टोरिया के साथ बैठकर डिनर करते थे, वो उनकी इज्जत करती थी। एक दफ़ा तो उसने पॉप की तरह ही उनको इज्जत दी, और लोगों ने पूछा कि भाई आप उनको इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो उसके दिल में इतनी इज्जत थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इंटरनेशनली कितने काम किए, लीग ऑफ नेशंस के सदर बने जो अब यूनाइटेड नेशंस है, और प्रिंस अली सलमान खान पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव बने, यानी इमाम का इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन हुआ। और इमाम सुल्तान शाह का ज़माना इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़माना है कि ज़माना किधर से किधर चला गया,
रिवॉल्यूशन बहुत हुए।
बहुत ज़्यादा। इमाम का ज़माने का आगाज़ हुआ था, इमाम की पैदाइश पर लालटेन जलती थी उस वक्त, बिजली नहीं थी अभी। और इमाम जब जामा बदलते हैं 1957 में, तो जेट प्लेन्स का ज़माना आ चुका है। इतना बड़ा जो डिफरेंस आया, ये रशीदा साहिबा ने जो एक किताब लिखी है, अ ब्रिज बिटवीन
ब्रिज,
टू
यस,
एपोक्स, के
ये
दो
ब्रिज
ज़मानों
बनाया
के
था।
बीच में ब्रिज। तो इमाम सुल्तान शाह की हस्ती, मतलब 80 साल की इमामत और 7 साल की उम्र में इमाम बने, तो इनकी जो 90 ईयर्स का, तकरीबन 90 ईयर्स का जो ये स्पान है, आप देखें उसमें तब्दीली कितनी आई। और कहते हैं कि लोगों को यकीन नहीं था कि लोहा हवा में उड़ सकेगा, लेकिन जहाज़ ईजाद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई, बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हो गई। ये ज़ाहरी साइंस की तरक्की थी जो अचानक बहुत ज़्यादा सामने आ गई। लेकिन इसके साथ आप देखें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जमात को बड़ी तादाद में इस्मे आज़म भी देना शुरू किया। इमाम हसन अली शाह दातार ने नहीं दिया था, इमाम अली शाह दातार ने इस तरह नहीं दिया था, सख्त इम्तिहान लेते थे। कहते हैं आदमी बैठता था और उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकते थे, अगर वो यूं हिल गया उसको इस्मे आज़म नहीं मिलता था। ऐसी जगहों पर बिठाते थे जहाँ से वो ज़रा भी लुढ़क के
लोहे के ऊपर वेल पे
वेल के ऊपर लकड़ी के छोटे से तख्ते पे बिठाते थे कि अगर वो गिरा या चूका तो उसको इस्मे आज़म नहीं मिलता था। लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बड़े पैमाने पे इस्मे आज़म दिया। देखिए दीन की कोई भी जो मूवमेंट होगी या कोई भी प्रोग्रेस होगी ना, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, और बैकग्राउंड क्या था, इस आयत का एक टुकड़ा पूरा हो गया था, लोग अपने मुंह की फूंकों से नूर को बुझाने की कोशिश करेंगे मगर खुदा अपने नूर को मुकम्मल करेगा। रोज़े दीन का ज़माना, दौरे कशफ शुरू हो गया था, और इस दौरे कशफ में इमाम का नूर आशिकार होना था। तो बहुत सारे मुरीदों को इस्मे आज़म दिया गया, और ये जो साइंस की तरक्की हुई थी, ये भी इंडिकेशन था कि रूहानियत में कोई ख़ास ज़माना चल रहा है। क्योंकि साइंस किसी और जगह से नहीं आई है, खुदा फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहू व मा नुनज़्ज़िलुहू इल्ला बिक़द्रि मालूम। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका ख़ज़ाना मेरे पास ना हो, और मैं उस ख़ज़ाने से थोड़ा थोड़ा तुम्हारी मालूमात के मुताबिक नाजिल करता हूँ। तो साइंस कोई बाहर से नहीं आ गई, साइंस भी खुदा के ख़ज़ाने से आई। लेकिन जब रूहानियत में बहुत ही तेज़ी का ज़माना आया, तो साइंस की भी बहुत सारी,
इमाम के
क्योंकि
साथ आई, क्योंकि वकुल्ल शैना अशैना हु पे इमामे मुबीन।
इमाम में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इमाम सुल्तान शाह का ज़माना चूँकि रूहानी लिहाज से बड़ा पावरफुल ज़माना था, इसमें इमाम का नूर ज़ाहिर होना था, इसलिए मुरीदों को मजबूत किया गया। खुद इमाम सुल्तान शाह ने एक जगह पर फरमाया कि कहते हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो इमाम सुल्तान शाह ने यहाँ पर इसका वो जिस्त लिखा है, इसको फ़ारसी के एक शेर में इस तरह से बयान किया है कि रूहुल कुद्दुस की अगर दोबारा से मदद हो जाए तो दीगरान हम बेकुनंद आंचे मसीहा मीकर्द, तो दूसरे लोग भी वो करने लगेंगे जो ईसा करते थे। फैज़ रूहुल कुद्दुस अरबाज मदद फरमायत दीगरान हम बेकुनंद आंचे मसीहा में कर दिया। हाफिज़ का शेर है कि अगर रूहुल कुदुस का फैज़ आपकी मदद करे तो आप भी ऐसे काम करने लगेंगे जो ईसा करता था। तो ये दौर ऐसा आने वाला था जिसमें बहुत सारे मोमिनीन को ताकत और पावर मिल सकता था, थोड़ी कोशिश से ज़्यादा नूर मिल सकता था। इससे पहले बहुत मुश्किल था, इसमें कोई कोई रूह जो है वो कामयाब होती थी, लेकिन ये दौर चूँकि इमाम के नूर के ज़ाहिर होने का आया, इसीलिए हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने एक दफ़ा पूछा कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीरातन को ख़त्म कर दिया, अब कहा मैं ही पीर हूँ, मैं ही शाह हूँ, तो आप बताइए पीर का होना अच्छा था या नहीं था?
लिहाज से अच्छा था,
मतलब आप पीर के पास जाते, अप्रोच
कर
करते, अपने दिल की बात सुनाते, जैसे माँ मेहरबान हो, बाप सख्त हो, तो माँ के पास जाकर आप वो कर सकते थे, और लेकिन पीरातन ख़त्म हो गई, तो इमाम ने जो काम किया था उसके अंदर तो कोई हिकमत होगी। तो हमारे उस्ताद ने फरमाया कि पीरातन ख़त्म होने में एक मैसेज था कि पहले कोई कोई पीर बन सकता था, अब मैंने ये दर्जा उठा लिया है, तुम सब कोशिश करो, तुम सब पीर बन सकते हो, है ना। और इमाम सुल्तान शाह ने फरमाया तुम चाहो तो पीर सदर दीन जैसे बन सकते हो, तुम चाहो तो हसन कबीर दीन जैसे बन सकते हो, तुम चाहो तो अहले बैत जैसे बन सकते हो। अगर मौला के सामने इतनी प्यारी बेटियाँ होती तो मौला फरमाते तुम फातिमा तो जहरा जैसी बन सकती हो, तुम खदीजतुल कुबरा जैसी बन सकती हो, तुम मरियम जैसी बन सकती हो। तो आप देखें मैसेज था, पीर को हटाने का मैसेज था कि भाई अब तुम सब दौड़ लगाओ, कुरान में है फिरू भागो वसाबिकु, और एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करो। तो ये भागना सचमुच जिस्म के पाँव से तो नहीं भागना था, अक्ल और इल्म के पाँव से भागना था कि हमको एक दूसरे से आगे बढ़ना है, एक दूसरे से सबकत ले जानी है। तो इस माना में इस दौर में ये बात कॉमन हो गई कि अब तुम सब आगे बढ़ो, तुम सब कोशिश करो। तो आप देखें इमाम ने जुबलियाँ मनाई, इमाम ने ऐसे तमाम काम किए कि इमाम को दूर दूर तक लोगों ने पहचाना। मैं वो गिनान पढ़ रही थी तो कह रहे कि यारा मत कोई आंखें थी 30 दिन वीरा तामू जियो मूता सही या न सो, कि उस दिन कोई रूह ये ना कहे कि मैंने तो सही से नहीं सुना था। इमाम ने अपने आप को आशिकार किया, डंके की चोट पे जुबलियाँ मनाई, बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर से मिले ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि कोई शख्स है जो दावा करता है कि मैं रसूल का जानशीन हूँ और मैं इमाम हूँ। मौलाना हाशिम इमाम ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ और मैं इस्माइलियों का स्पिरिचुअल लीडर हूँ। तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में रसूल के बाद लीडर की ज़रूरत महसूस हुई थी, सबको महसूस हुई थी। कुछ ने अबू बकर को अपना लीडर बनाया और जो शिया थे उनको यकीन था कि मौला अली उनके जानशीन हैं, तो उन्होंने मौला अली को, इसका मतलब लीडर की ज़रूरत सबको महसूस हुई थी। मगर आज बहुत से मुसलमानों के पास लीडर नहीं है, तो इमाम आज दावा कर रहे हैं, कोई और शख्स है जो ये दावा करे कि मतलब मेरे बाप दादा भी इस नूर के हामिल थे और मैं भी आज लीडर हूँ, कोई भी नहीं है दुनिया में। तो आज मौला ने डंके की चोट पर, पहले हम कितना छुप छुप के बातें करते थे, लोगों को नहीं बता सकते थे, जब इंडिया से हम हिंदुओं से मुसलमान हुए तो छुप छुप के रहते थे, डर डर के रहते थे, लेकिन अंडा जब अंडे के अंदर जब चूज़ा बन जाता है तो अंडे को टूटना चाहिए, अगर उस वक्त अंडा नहीं टूटा तो चूज़ा मर जाएगा, अंडा भी ज़ाया हो गया चूज़ा भी ज़ाया हो गया। तो हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको अलग थलग रखा गया था, लेकिन अब ज़माना आया है जहाँ इमाम आशिकार है, इल्म से हमारे लिए मौके पैदा किए हैं मौला ने, अब लिटरेचर है, इसीलिए इमाम ने अटलांटा में फरमाया तुम सब दाई हो, तुम सब दाई बनो, इल्म देने वाले बनो, इसका मतलब अब इल्म का ज़माना है, तुम सब कोशिश करो, तुम सब आगे बढ़ो। तो ये वो ज़माना है। अब हम आते हैं इमाम की उस, मौलाना हाजी इमाम की स्पीच के उस हिस्से पे, ये इस्लामी फन तामीर, इस्लामिक आर्किटेक्चर की कोई तकरीब थी जिसमें मौलाना हाजी इमाम ने एक यूनिवर्सिटी में फरमाया आया ए नूर के बारे में। इट टेल्स अस that the oil of the blessed olive tree lights the lamp of understanding, a light that belongs neither to east nor west. We are to give this light to all. ये सूरा, ये आया, आया ये नूर हमको बताता है कि मुबारक दरख्ते जैतून का तेल चिरागे फहम यानी अंडरस्टैंडिंग के लैंप को नूर बख्शता है. यानी इमाम ने अब इसका फ़ायदा कायनात के लिए ओपन कर दिया. आज इमाम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना. इमाम इंटरफेथ सेशंस जब अटेंड करते हैं, इमाम आर्किटेक्चर को यानी बिल्डिंग में भी तुम अपने दीन को कैसे मौजूद रख सकते हो वो भी हमको सिखा रहे हैं. डेवलपमेंट के ज़रिए इमाम दुनिया में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं और दुनिया के बहुत से लोग अप्रिशिएट करने लगे. इमाम को कितने अवार्ड्स मिले, कितनी रिकग्निशन हो गई है. इसका मतलब इमाम एक लीडर की हैसियत से इम्पैक्ट डाल रहे हैं. और मैं नॉर्थ की बात करती हूँ चूँकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है. इधर हुंजा है, बीच में दरिया है, सामने नॉर्थ है, शियों का इलाका है. एक वहाँ पर मैटरनिटी होम या वो नहीं था, घरों में डिलीवरीज होती थी. इस्माइली लड़कियाँ कराची से सिंध से जाकर उन्होंने पहले हुंजा में हेल्थ सेंटर्स बनाए, फिर हमारी बच्चियों ने जाके नगर में हेल्थ सेंटर चलाए. आज उनकी बच्चियाँ भी काबिल हो गई हैं. इमाम ने नमूना कायम किया ना. कौन बेचता अपनी बच्चियों को ऐसे इलाके में जहाँ एक भी आदमी जानने वाला नहीं हो. लेकिन इस्माइलियों में वो हिम्मत पैदा की और वहाँ की ख़वातीन, वहाँ पर 100% एजुकेशन है, आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा, लेडीज़ बहुत ही कॉन्फिडेंट हो रही हैं. ये सब इमाम के नूर का मौजज़ा है. तो अब इससे ज़ाहिर होता है कि इमाम का नूर दुनिया को हेल्प कर रहा है. तो इमाम ने फरमाया कि इस आयत के बारे में हमें सोचना. ये आयत हमको बताती है दैट द ऑयल ऑफ द ब्लेसड ऑलिव ट्री लाइट्स द लैम्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब अब दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझने का वक्त है, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने का वक्त है, नफ़रत को मिटाने का वक्त है, ह्यूमैनिटी को एक करने का वक्त है. इसलिए मौला फरमाते हैं कि कुरान की ये आयत हमको बताती है कि अब अंडरस्टैंडिंग के चिराग को जलाना है उस दरख्त से जो ईस्ट का भी नहीं है और वेस्ट का भी नहीं है. इसका मतलब इसमें कुछ स्पिरिचुअल हैंड होगा. और ये स्पिरिचुअल हैंड क्या होगा, ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं इसी किताब में. इमाम फरमाते हैं, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मैनकाइंड ऑफर्स श्योरली विथ ऑल इट्स डेंजर्स एंड ऑल इट्स चैलेंजेस अ चांस ऑफ एस्टेब्लिशिंग नॉट जस्ट मटीरियल पीस अमंग नेशंस बट दैट बेटर पीस ऑफ गॉड ऑन अर्थ. इमाम सुल्तान फरमाते हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं, चैलेंजेस भी हैं, मुश्किलात भी हैं, डेंजर्स भी हैं, मगर इसके साथ साथ एक चांस भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है. और अपॉर्चुनिटी क्या है, एस्टेब्लिशिंग नॉट जस्ट मटीरियल पीस अमंग नेशंस बट दैट रादर पीस ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. खुदाई अमन कायम करने का मौका भी है चूँकि इंसानियत करीब आई है, एक दूसरे को समझने लगी है. पहले मुल्क बहुत दूर दूर होते थे, पता नहीं चलता था, इसलिए बड़ी गलत फहमियाँ होती थी. खुद इस्लाम के बारे में कितनी गलत फहमियाँ थी, लेकिन अब आप देखें वीडियोज़ कैसे कैसे आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि भाई हमने मुसलमानों को कंपैशनेट देखा, हमने कंपैशन के सिवा कुछ नहीं देखा. इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिवील कर रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं. फिर इमाम फरमाते हैं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, इन दैट एंडेवर इस्लाम कैन प्ले इट्स वैल्यूएबल कंस्ट्रक्टिव पार्ट. जो दुनिया में खुदाई अमन कायम होगा, इस्लाम उसमें अपना तामीरी रोल अदा कर सकता है. इन द इस्लामिक वर्ल्ड कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबलाइजिंग फैक्टर. इस्लामी दुनिया खुदा के उस अमन को कायम करने में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर का काम करेगी, प्रोवाइडेड इट इज़ रियली अंडरस्टूड एंड इट्स स्पिरिचुअल एंड मॉरल पावर रिकग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड. अगर इस्लाम का जो मॉरल और स्पिरिचुअल पावर है उसको लोगों ने रिकग्नाइज किया, उसको रिस्पेक्ट किया, तो ये पावर दुनिया में खुदा का अमन कायम करने में मदद देगा. तो आप देखें मौलाना हाजी इमाम का ये फरमाना कि ये आयत अंडरस्टैंडिंग का चिराग जला रही है उस तेल से जो ईस्ट का भी नहीं है और वेस्ट का भी नहीं है. इसका मतलब दुनिया में सारे इज़्म फेल हो गए, कम्युनिज़्म फेल हो गया, सोशलिज़्म फेल हो गया, कैपिटलिज़्म फेल हो गया, हम जैसे मुल्कों में जमहूरियत भी फेल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज़्म आएगा. खुदा अपनी नूरानी ताकत से वो चीज़ कायम करेगा. और जैसे जैसे इमाम का नूर आगे से आगे बढ़ता जाएगा, नूर कंप्लीट होता जाएगा. और इस नूर के कंप्लीट होने की एक बहुत अच्छी मिसाल ये है, मतलब इमाम चाहते हैं उसका नूर उसके मोमिनों से ज़ाहिर हो जाए. इमाम सुल्तान शाह का एक बहुत सख्त फरमान है کہ اگر تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو،
قتل کرتے
قتل کرتے ہو. ایک جگہ امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سے تو یزید کے لوگ اچھے تھے، انہوں نے صرف امام حسین کو ظاہر میں قتل کیا تھا، تم تو ہمارا نور قتل کرتے ہو. تو کتنا سخت فرمان ہے، آپ پہ کتنا پریشر پڑتا ہے. لیکن یہ کہ تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو یا قتل کرتے ہو، ایک مجھ جیسے گناہگار مومن کی کیا ہمت ہے کہ میں مولا کے نور کو قتل کروں یا کم کروں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میرا نور یہاں تو کمپلیٹ ہے ہی، تم سے بھی ظاہر ہوگا، تمہارے ویسل سے، تمہاری پرسنالٹی سے ظاہر ہوگا. لیکن تم نے اس کو یہاں روک دیا تو تم نے میرے نور کو کم کیا. میرا نور مجھ میں تو تھا ہی، تم سب سے بھی ظاہر ہونا تھا. اور دنیا دیکھتی، او ہو، آغا خان کے مرید اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کا اخلاق، ان کی زندگی، ان کا علم، تو میرا نور تم سے بھی ظاہر ہونا. لیکن تم نے اس نور کو ظاہر نہیں ہونے دیا، تم نے میرے نور کو کم کر دیا. تو یہ پاسبلٹی تھی، لیکن اس پاسبلٹی کو تم نے کم کر دیا. تو اب امام جو پوری کائنات میں اس نور کو عام کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں امام کے دو نام ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. امام کا ایک نام ہے امام الناس، امام آف آل دا پیپل، امام المتقین، امام آف دا پائس، پائس پیپل، متقین کا امام اور تمام لوگوں کا امام. تو ہم مولا باپا، مولا باپا وہ سمجھتے ہیں کہ مولا باپا صرف ہمارا ہے، مولا باپا کائنات کا ہے، وہ پوری کائنات کا امام ہے. کوئی اس کو امام مانتا ہے نہیں مانتا ہے، سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، لیکن سب کی روحوں کو ایک روح کی نہر امام کی طرف سے جا رہی ہے. خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی نفس کی طاقت سے ہم سب زندہ ہیں. تو امام کے نور کی وجہ سے لوگ دنیا میں زندہ ہیں. امام ہی نفس کل ہے، امام ہی عقل کل ہے. اس کی عقل سے لوگوں کو عقل مل رہی ہے، اس کی روح سے لوگوں کو زندگی مل رہی ہے. تو امام کائنات کا بھی امام ہے، لیکن پرٹیکولرلی امام متقین کا امام ہے. اس کا مطلب متقین جو ہیں ان کو زیادہ چانس ہے، ان کی ہستی سے امام کا نور ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن امام باقی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، پوری خلقت خدا کا کنبہ ہے، خدا کا خاندان ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں جو اس کے کنبے کی مدد کرے گا خدا کی نظر میں وہ بہت پیارا ہوگا. تو امام اب ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، جماعت کے لیے زیادہ مواقع ہیں. تم اس کے نور سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس کی روحانیت سے فائدہ اٹھاؤ، انسانیت کے لیے الگ قسم کا فائدہ ہے. اسی لیے مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ اب یہ بلیسڈ اولیو ٹری کا آئل جو ہے وہ لیمپ آف انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گا، لیکن اس اسپریچول طاقت سے جو نہ ایسٹ کی ہے نہ ویسٹ کی ہے. تو الحمدللہ ہم ایک بہت اچھے زمانے میں ہیں، ایک بہت اچھے دور میں ہیں، اور یہاں پر ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے. پہلے بزرگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، مگر اب تھوڑی سی محنت سے پھل مل سکتا ہے، چونکہ زمانہ چینج ہوا ہے، اور یہ اس مومنین کی خوش نصیبی ہے. تو دور ستر گزر چکا ہے، دور کشف. اب امام ایسا آشکار ہے کہ کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے امام کو نہیں دیکھا یا نہیں پہچانا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی امام بھی تھا دنیا میں. تو اسی میں مولا پیر فرماتے ہیں، یارا نور شاہ جو گتیے میں ورسیو ورسیو جل تھل میر لو، کہ امام کا نور جماعت پہ برسا، اور ایسا برسا جیسے بارش میں زمین جل تھل ہو جاتی ہے. تو اب اس نور کو صرف ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب امام کا نور بہت تیزی سے ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم علم سے اور عبادت سے مضبوط ہو جائیں گے تو یہ نور ہم سے بھی آشکار ہوگا.